तीसरा, सूखता हुआ तालाब, डॉक्टर रामदरस मिश्र, ब्रैकेट में 1972, पृष्ठ संख्या 69। जल टूटता हुआ की भांति इस उपन्यास का शीर्षक भी प्रतीकात्मक है। गांव का तालाब सूख गया है, उसमें काई और कीचड़ हो गई है। लोग उसमें निबटने आते हैं। तालाब का यह सूखना और उसमें गंदगी का फैलना वस्तुतः ग्रामीण नैतिक मूल्यों का चूकना और राजनीतिक एवं यौन गंदगी का फैलना है। जल टूटता हुआ जहाँ एक बृहदकाय उपन्यास है, वहाँ सूखता हुआ तालाब एक लघु उपन्यास है, जिसमें छोटे से कलेवर में गांव की गंदगी, धर्म अधर्म, छल प्रपंच, दाव पेच, छीन झपटी, ईर्ष्या द्वेष, ढोंग, प्रतिशोध की भावना, नीति अनीति सभी कुछ मूर्त हो चुके हैं। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास में भी गांव में फैलती सर्वग्रासिनी गंदी घिनौनी राजनीति के दुष्परिणामों को लेखक ने वैज्ञानिक एवं तटस्थ दृष्टिकोण से उकेरा है। बिरादरी और पट्टीदारी भी राजनीति के सिकंजे में आ गई है। जीवन की तमाम तमाम बातों को देखने का एकमात्र नजरिया राजनीति रह जाता है। यहाँ तक कि गाँव की बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत जैसे संवेदनशील विषयों को भी राजनीति की कीचड़ में घसीटा जाता है। गांव के एक नेता शिवलाल की लड़की पृष्ठ संख्या 70 कलावती को मास्टर धर्मेंद्र से गर्व रहता है, जो पट्टीदारी के हिसाब से उसका भाई लगता है। इस नैतिक दृष्टि से डूब मरने वाली बात का भी कलावती का सगा भाई रामलाल राजनीतिक उपयोग करता है। वह अपनी बहन को सिखाता है कि इस कुकृत्य का दोष विरोधी दल के देव प्रकाश के पुत्र रविंद्र पर डाल दिया जाए। गांव के एक दूसरे व्यक्ति और देव प्रकाश के मित्र जयराम के द्वारा सही स्थिति का पर्दाफाश होता है। तब रामलाल जो बात करता है उससे प्रतीत होता है कि सचमुच अब खून पानी हो गया है। यथा इन्वर्टेड कमापन, आ गांव वाले सालों की क्यों छाती फटती है? धर्मेंद्र भैया ने कुछ किया है तो मेरी बहन के साथ किया है ना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सूखता हुआ ताला, डॉक्टर रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 99। पैराग्राफ चेंज। जल टूटता हुआ में सतीश, अखिलेश जी, कुंजू जैसे कुछ आदर्श और स्वप्न प्रेमी पात्र है, तो यहाँ देव प्रकाश और जयराम जैसे लोग हैं जो नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। परंतु गाँव अब शिवलाल, श्यामदेव, मास्टर धर्मेंद्र, बनारसी, कॉमरेड मोतीलाल जैसे बदमाश और हिजड़े नुमा नेताओं का अड्डा बन गया है। देव प्रकाश अपनी निर्भीक, दो टूक, न्याय संगत बातों के कारण गांव के भ्रष्ट नेताओं की आंख की किरकिरी हो जाते हैं। शंकर और जयराम देव प्रकाश के पक्ष में हैं, किंतु जयराम के बड़े भाई का जब देहांत होता है तब गाँव के नेताओं, पट्टीदारों और खुद अपनी भाभी के दबाव में आकर उस उपलक्ष में रखे भोजन में देव प्रकाश के परिवार को बहिष्कृत किया जाता है। यह एक प्रकार से नैतिक मूल्यों पर गांव की गंदी घिनौनी राजनीति की पार्टीबंदी गुटबंदी की विजय है। देव प्रकाश इस घटना से टूट जाते हैं। क्या है मानवता, क्या है मूल्य? कुछ नहीं बचा है, बचा है केवल सुख सुविधा परक समझौता। तब तो कहीं कुछ भी विश्वसनीय नहीं, कहीं कुछ भी अटूट नहीं, कहीं कुछ भी मूल्य नहीं, आत्मीय नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सूखता हुआ तालाब, डॉक्टर रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 105। पैराग्राफ चेंज। देव प्रकाश का यह अंतर्द्वंद एक प्रकार से हमारे युग के सभी शुभाकांक्षी नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले स्वप्न दृष्टा लोगों की आत्म प्रताड़ना हो जाता है। कॉमरेड मोतीलाल अपनी भयऊ से फंसे हैं। शिवलाल, दयाल तथा मास्टर धर्मेंद्र तीनों चेनैया चमाइन से शारीरिक संबंध रखते हैं। गरीबी के कारण चेनैया की माँ उससे वैश्यावृत्ति करवाती है। मास्टर धर्मेंद्र रामलाल की बहन कलावती को फांसता है। धर्मेंद्र की बहन लीला रामदौना अहिर के साथ फंसी है। लीला का प्रेम व्यवहार रामदौना से चलता है, परंतु कभी कभी उसकी अनुपस्थिति में देव प्रकाश का लड़का रविंद्र उसकी शारीरिक सुधा को तृप्त करता है। एक तरफ लीला तथा कलावती जैसे उच्च वर्ग की कन्याएं गर्भ रहने पर उसे गिरा देती है, वहां चिनैया चमारिन गर्भ न गिराकर पूरे गांव और समाज को चुनौती देती है। इसके लिए वह गांव भी छोड़ देती है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में ग्रामीण जीवन के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों की विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। चौथा उग्र तारा नागार्जुन ब्रैकेट में 1963। उग्र तारा प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर नागार्जुन का एक गांभीर्य उपन्यास है जिसमें लेखक ने उग्नि अर्थात उग्र तारा नामक एक आधुनिक ग्रामीण नारी के तेज तीखे तेवरों को प्रस्तुत किया है। उग्नि एक युवा विधवा है। यह विधवापन उसे जैसे विरासत में मिला है। उसकी माँ तथा नानी भी विधवाएं थी। पृष्ठ संख्या 71। पुरानी पीढ़ी के समाज के ठेकेदार विधवा विवाह का विरोध करते हैं क्योंकि उनके लिए तो गांव की विधवाएं वरदान स्वरूप होती है, परंतु नर्मदेश्वर की भाभी मढ़िया सुंदरपुर के युवक युवतियों में नई चेतना के प्राण फूंक देती है। उनके ही प्रयत्नों से नई वैचारिक चेतना को धारण करने वाला कामेश्वर उग्रतारा को चाहने लगता है और उसके साथ विवाह करने के लिए भी तैयार हो जाता है, परंतु पुराने रूढ़िवादी समाज के ठेकेदारों के रहते यह संभव नहीं था। अतः कामेश्वर और उग्नि भाग जाते हैं, परंतु गांव वालों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उग्नि को 3 महीने की और कामेश्वर को 9 महीने की सजा हो जाती है। इस बीच पुलिस तथा मढ़िया सुंदरपुर के नर राक्षस उग्नि के देह को कई बार गंदी करती है। यहाँ तक कि समाज के ये ठेकेदार जबरदस्ती उग्नि का विवाह प्रौढ़ उम्र के सिपाही भभीखन सिंह से करवा देते हैं। इसका बड़ा ही मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण चित्रण लेखक ने किया है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, भभीखन सिंह ने वैदिक विधियों से शादी की थी। ठीक है, आधे घंटे तक अग्नि में आहुतियां डाली गई। ठीक है, हवन के धुएं ने बहुतों की आंखों को आनंद के आंसुओं से गीला कर दिया था। ठीक है, तोला भर सिंदूर मांग के बीचों बीच कई दिनों तक जमा रहा। सब कुछ ठीक है, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच उम्र का इतना बड़ा फासला किस तरह माखौल उड़ा रहा था विवाह के संस्कार का। बाबू भभीखन सिंह को कानूनी तौर पर बलात्कार का हक हासिल हुआ था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ उग्रतारा नागार्जुन पृष्ठ संख्या 42। परंतु कामेश्वर के छूटने पर उग्नि पुनः उसके साथ चली जाती है। उग्नि को दूसरे का गर्व भी रहा है, परंतु कामेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। वह पराये गर्व को ढोने वाली अपनी प्रेमिका को पुनः स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार उग्नि और कामेश्वर दोनों क्रमशः पुरुष की मर्दानगी और स्त्री की यौन सुचिता के पुराने विचारों को तिलांजलि देते हुए से प्रतीत होते हैं। लेखक की वस्तुवादी दृष्टि ने समाज में पुलिस की अप्रगतिकामी भूमिका को भी चिन्हित किया है। पांचवा, इमरतिया नागार्जुन ब्रैकेट में 1968 पृष्ठ संख्या 71। नागार्जुन एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण संपन्न प्रतिश्रुत लेखक है। धर्म और धार्मिकता में बुराई नहीं है, परंतु धर्म के नाम पर चलने वाला छद्म धर्म मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। अतः इस उपन्यास में लेखक ने धर्म के नाम पर मठों और मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई परत दर परत खोली है। जमनिया गांव बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमावर्ती स्थान पर नारायणी नदी के किनारे आया हुआ है। एक दिन अचानक एक साधु आता है और गांव के कुछ मुखिया नुमा लोगों से मिलकर एक छोटे से मठ की स्थापना करता है। फिर तो यह मठ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है और कुछ ही वर्षों में उसकी ख्याति दूर दूर से गाँवों और नगरों तक फैल जाती है। बड़े लोग, मंत्री, एमएलए, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि शिवनगर स्टेट की रानी साहिबा भी जमनिया मठ के बाबा के भक्त हो जाते हैं। गांव के न्यस्त हितों वाले लोग अपने स्थापित हितों की रक्षा तथा उनके संवर्धन के लिए जमनिया मठ से जुड़ते हैं। पृष्ठ संख्या 72, जिनमें भगवती प्रसाद, लालता प्रसाद, राम जन्म, सुखदेव, सेठ विरधि चंद, ठाकुर शिव पूजन सिंह आदि जमनिया मठ की स्थापना के बाद निरंतर फलते फूलते जा रहे थे। एक स्थान पर बाबा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह क्या मेरी जटाओं का जादू नहीं था कि भगवती ने अपनी 4 लड़कियों की शादी में लाखों खर्च किए। सेठ विरधि चंद की तोंद तिगुनी किस तरह हुई। ठाकुर शिव पूजन सिंह ने ट्रैक्टर खरीदा। राम जन्म और सुखदेव की क्या हैसियत थी 10 वर्ष पहले। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ इमरतिया नागार्जुन पृष्ठ संख्या 111। इसमें लेखक ने धर्म धन और सत्ता का गठबंधन रेखांकित किया है। यहाँ मेरे निर्देशक महोदय का एक शेर मेरी स्मृति में कौंध रहा है। धर्म जुड़ता धन के पीछे, सत्ता जुड़ती धन के पीछे भाग रहे सब, चाट रहे हैं तलवा तलवा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सूखे सेमल के वृंतों पर, डॉक्टर पारुकांत देसाई, पृष्ठ संख्या 83। पैराग्राफ चेंज। मठ में धार्मिकता के नाम पर घनघोर भ्रष्टाचार चलता है। उसमें गौरी, लक्ष्मी, इमरतिया जैसी सधुआइनों को रखा जाता है, जिनका प्रयोग अधिकारियों और राजनेताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। मठ की भ्रष्ट रीति नीतियों को लेकर जब किसी कोने से आवाज उठती है, तो उसे दबा देने के लिए गौरी जैसी अलमस्त सधुआइन को भेज दिया जाता है। गौरी साल में कई कई मर्द बदलती है। उसका कहना है कि वह गरमाए हुए घोड़े को भी शांत कर सकती है। लक्ष्मी को बाबा से ही गर्व रहता है। तब मठ की सिद्धई के नाम पर एक बच्चे को हवन कुंड में डालकर उसकी बलि दी जाती है। लक्ष्मी पागल हो जाती है। अभी इमरतिया बची हुई है, क्योंकि वह कमसिन है। जिस प्रकार कसाई बकरे को खिला पिलाकर मोटा ताजा करते हैं, उसी प्रकार इमरतिया को भविष्य के लिए बचाए रखा है। परंतु वह बाबा के शिष्य मस्तराम को चाहती है और उसे हरिद्वार से मिलने का संकेत भी देती है। पैराग्राफ चेंज। मठ में निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति कराने की एक चमत्कारिक योजना चल रही है। प्रकटतः आश्रम स्थित महिलाओं को सुबह शाम बाबा की मंत्र सिद्ध सोटी छुआई जाती है। परंतु वस्तुतः बाबा, भगवती, लालता, रामजन्म, सुखदेव तथा मठ में आने वाले सत्ताधारी अतिथि इत्यादि इस दूसरे मोर्चे को संभाल लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। यही लोग ठूठ की कोख से पौधा पैदा करने की विद्या जानते हैं। पत्थर पर धूप जमाने की हिकमत इन्हीं लोगों को मालूम थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ इमरतिया नागार्जुन, पृष्ठ संख्या 115। उपन्यास की कथा कुल इतनी ही है कि स्वामी अभयानंद नामक एक शिक्षित समाज सेवी साधु की मठ के लोगों द्वारा बुरी तरह पिटाई होती है। उनकी पहुंच ऊपर तक थी। फलतः बाबा मस्तराम, इमरतिया आदि को धर लिया जाता है और उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा मठ की तमाम भ्रष्ट करतूतें प्रकाश में आती है। स्मरण रहे कि अभी कुछ वर्ष पूर्व द्वारिका के केशवानंद महाराज की करतूतें प्रकाश में आई थी। अभी संप्रति कुछ महीने पूर्व छोटा उदयपुर स्थित रंग निकेतन आश्रम और उसके सर संचालक हरि वल्लभ परीख की प्रवृत्तियों का पर्दाफाश किया गया था। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में धर्म के नाम पर चलने वाले स्त्रियों के यौन शोषण को समेकित किया गया है। छठवां, धरती धन्ना अपना। डॉक्टर जगदीश चंद्र, ब्रैकेट में 1972, पृष्ठ संख्या 73। नई पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर जगदीश चंद्र एक प्रगतिशील दृष्टि संपन्न लेखक है। प्रस्तुत उपन्यास उनकी प्रथम रचना है, जिसमें उन्होंने पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा नामक गांव के चमार हरिजनों के जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। सहस्त्राधिक वर्षों से प्रताड़ित इस जाति के लोगों को अन्याय, अत्याचार और अपमान की वैतरणियों से किस प्रकार गुजरना पड़ता है, उसका हृदय द्रावक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। काली, प्रतापी, ताई निहाली, बंतो, शानो, प्रीतो, ज्ञानो, लक्षो, बाबा फत्तू, जित्तू, मंगू, छज्जू शाह, चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी धर्डम सिंह, मुंशी चौधरी, नंद सिंह, डॉक्टर बिशन दास, टहल सिंह, लालू पहलवान जैसे लोगों के जीवन की यथार्थ घटनाओं का लेखक ने आलेखन किया है। यहाँ चमार हरिजनों को छोड़कर गांव के तमाम तमाम लोग उस वर्ग में आते हैं जो दलित जातियों का हर तरह से शोषण करते हैं। उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार होता है। उन्हें कारण अकारण बुरी तरह से पीटा जाता है। स्वयं लेखक ने इस संदर्भ में कहा है, इन्वर्टेड कमापन, चमादड़ी में ऐसी घटना कोई नई बात नहीं थी। ऐसा अवसर होता रहता था। जब किसी चौधरी की फसल चोरी कट जाती थी या बर्बाद हो जाती थी या चमार चौधरी के काम पर ना आता या फिर किसी चौधरी के अंदर जमीन की मलकियत का एहसास और जोड़ पकड़ लेता तो वह अपनी साख बनाने और चौधर मनवाने के लिए इस मोहल्ले में चला आता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र पृष्ठ संख्या 35। चौधरी लोग गांव के दलित जाति के लोगों को बात बात में साला कुत्ता चमार की गाली देते हैं। मंगू हरनाम सिंह का मुंह लगा नौकर है। एक बार छज्जू शाह और हरनाम सिंह की बातचीत में वह कुछ कहने जाता है, तब हरनाम सिंह मंगू को डांटते हुए कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कुत्ते की औलाद चुप बैठ, कुत्ता चमार अपने आप को बड़ा पंच समझता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वही पृष्ठ संख्या 57। वस्तुतः हरनाम सिंह मंगू को इसलिए डांटते हैं कि काली वहां उपस्थित था। मंगू के बहाने ये शब्द वे काली को ही कहते हैं। गाली गलौज ही नहीं, गांव के ये ऊंचे लोग दलित जाति के लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलते हैं, बल्कि इसे वे अपना अधिकार समझते हैं। हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव सिंह दिन दहाड़े प्रीतों की अविवाहित लड़की लक्षों की लाज लूटता है। जवानी के दिनों में प्रीतों भी हरनाम सिंह से जुड़ी हुई थी। वस्तुतः इन लोगों को दिन रात घरों में तथा खेतों में काम करना होता है, अतः ये लोग उनका यौन शोषण बहुत ही सहजता से कर सकते हैं। शुरू शुरू में कोई चमारिन विरोध भी करती, परंतु बाद में उसे वह अपना दयनीय विवश जिंदगी का हिस्सा समझ लेती है। आजीविका के लिए चौधरियों पर निर्भर रहने के कारण पुरुष वर्ग भी चुप्पी साध लेता है। मंगू जैसे लोग तो बल्कि इसमें सहायक ही होते हैं। एक बार चमारों का एक लड़का चौधरी के किसी लड़के पर हाथ उठाता है, तब उसे लेकर जो पंचायत बैठती है उसमें बाबा फत्तू चौधरियों को कहते हैं कि इसमें चमारों का कोई कसूर नहीं, इसके लिए भी आप लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस चमार लड़के में किसी चौधरी का ही खून दौड़ रहा होगा। पैराग्राफ चेंज। काली ज्ञानो जित्तू जैसे कुछ लोगों में दलित चेतना के बीज मिलते हैं। उपन्यास का प्रारंभ काली के पुनरागमन से होता है। काली शहर से कुछ रुपए कमाकर आया है। अन्य चमारों की तुलना में पृष्ठ संख्या 74। बाहरी तौर पर गांव के लोग काली की जो इज्जत करते हैं उसका यही कारण है, परंतु कमाई के रुपयों को काली मकान बनवाने में खर्च कर देता है, शेष रुपए चोरी हो जाते हैं। काली ज्ञानों से शादी करना चाहता है, परंतु जात बिरादरी के झंझटों के कारण नहीं कर पाता। ज्ञानों को काली का गर्व रहता है, वह आत्महत्या कर लेती है। काली पुनः गांव से भाग जाता है। संक्षेप में इस उपन्यास में दलित लोगों के जीवन को बहुत गहराई से उकेरा गया है। 7वां, कभी न छोड़े खेत, डॉक्टर जगदीश चंद्र ब्रैकेट में 1976 पृष्ठ संख्या 74। जहाँ धरती धन न अपना चमार हरिजनों के जीवन से संबद्ध था, वहाँ जगदीश चंद्र का उपन्यास कभी न छोड़े खेत स्वातंत्र्योत्तर काल में ग्रामीण परिवेश में किसानों के पूंजीवादी और सामंतवादी मिले जुले संस्कारों के कारण गुटबंदी और खून खराबा को उपन्यास की कथा वस्तु बनाया है। इसमें लेखक ने नंबरदारों और नीलों वालियों के मध्य पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली दुश्मनी, उसके कारण होने वाली फौजदारियां, कोर्ट कचहरी पुलिस आदि को कथावृत्त में लिया है। इस प्रकार यह उपन्यास गांव के जाटों नंबरदारों गुजरों यादवों ठाकुरों और मध्यवर्गीय किसानों की पुश्तैनी दुश्मनी का दस्तावेज है। इसमें परस्पर की इस शत्रुता के कारण नुकसान गांव के लोगों का ही होता है। पुलिस व्यवस्था न्यायालय अस्पतालों के दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। फौजदारी के किस्सों में रिश्वत और भ्रष्टाचार का एक और पहलू सामने आता है। डॉक्टरों को झूठी रिपोर्ट लिखने के लिए तथा झूठी रिपोर्ट न लिखने के लिए रिश्वत दी जाती है। वकीलों की फीस 4-4, 5-5 हजार होती है, जिसे सुनकर आम आदमी को तो गस आ जाती है। जज रिश्वत लेकर फैसला बदल देते हैं। उपन्यास का एक पात्र कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, बस कीमत देनी पड़ती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कभी न छोड़े खेत जगदीश चंद्र पृष्ठ संख्या 109। धार्मिक मठों के महंत भी ग्रामीण लोगों का शोषण करते हैं। वे जमींदारी लेन देन आदि सभी काम करते हैं। इतना ही नहीं, उनके मठ अखाड़े आदि व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं। डेरे का महंत श्याम सिंह मक्खन में बादाम और शहद मिलाकर चाटता है, स्त्रियों से बादाम रोगन की मालिश करवाता है और पैरों को दबवाता है। धर्मांध स्त्रियां इन पाखंडियों के चक्कर में फंसकर यौन शोषण का शिकार होती है। प्रस्तुत उपन्यास में भी निम्न जाति की स्त्रियों के प्रति अत्याचार और अन्याय की बातों को सहज ही पाया जाता है। स्त्रियों के प्रति किसानों का रुख सामंतवादी ही होता है। वे लोग जीवन की भांति स्त्रियों को भी अपनी मलकियत का ही मानते हैं। उपन्यास में एक स्थान पर मिल्खा सिंह कहता है, इन्वर्टेड कॉमापन, जल ब्रैकेट में स्त्री और जमीन जाट कौम की सबसे बड़ी दौलत है। एक उसके लिए आदमी जनती है और दूसरी अनाज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 23। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में करतारा, प्यारू, महंत शाम सिंह, वंचित सिंह, नत्था सिंह, शंकर बिलखा सिंह जैसे लोगों के द्वारा पंजाब के एक गांव का यथार्थ चित्रण किया गया है। आठवां, बबूल, डॉक्टर विवेकी राय ब्रैकेट में 1967। बबूल डॉक्टर विवेकी राय का ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें लेखक ने सर्वहारा वर्ग को केंद्र में रखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक दीनहीन सभी वर्गों द्वारा उपेक्षित पृष्ठ संख्या 75 और निराश्रित हरिजन मजदूर वर्ग की समस्या यहाँ प्रधान रूप से उभर कर आई है। मजदूरों का शोषण, उनकी फटेहाली, जमींदारों के जुल्म, वर्षा, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं, गांव के बाबू लोगों तथा बिरादरी के चलता पुर्जा नेताओं की मिलीभगत से चलने वाला शोषण चक्र निरंतर गतिमान रहता है। उपन्यास के प्रारंभ में लेखक ने एक फैंटेसी रखी है। चित्रगुप्त और उनके सहायक प्रबुद्धशील में गरीबी को लेकर बहस छिड़ती है। अतएव प्रबुद्धशील 25 वर्षों तक कथानायक महेश राम उर्फ महेशवा के साथ रहकर गरीबी के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करता है। उपन्यास का आरंभ घुरभील शीर्षक से होता है, जो महेशवा का पिता है। सुखी संपन्न भरपेट लोग जहां बाढ़ के दृश्य से आनंदित होते हैं, वहां घुरभील अपनी फसल को बर्बाद होते देख छाती पीट लेता है। महंत की कुटिया पर नृत्य का आयोजन होता है, जहां कुछ लोगों को रोमांस और आमोद के साधन उपलब्ध होते हैं। दूसरी तरफ घुरभील महंत की कुटिया पर इसलिए जाता है कि प्रसाद के बहाने कुछ मिल जाए तो प्रसव वेदना से कराहती पत्नी दर्पणी की भूख को कुछ मिटाया जा सके। प्रसाद मिलने में विलंब होता है और घुरभील मारे भूख के दम तोड़ देता है। यहाँ लेखक ने यह बताया है कि गरीबी मजदूरों का शोषण केवल जमींदार महाजन ही नहीं करते, बल्कि उनकी बिरादरी के मजदूर भी करते हैं। दर्पणी का शोषण बाबू लोग तो करते ही हैं, परंतु उनकी अपनी बिरादरी का नरेश भी इसमें पीछे नहीं रहता। परंतु बबूल की दर्पणी अब प्रेमचंद के कफन की बुधिया जैसी भोली नहीं रह गई। अपनी स्थितियों के प्रति वह सजग है। नरेश उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु वह उसके बहकावे में नहीं आती। वह जानती है कि नरेश के साथ विवाह करके सुखी होने के बदले दो चार और छोरों को जन्माएगी और जांग कर ठिठाते ठिठाते मर जाएगी। वह नरेश की नीयत को भली भांति जानती है। वह महेश्वा को चरवाहा में लगाना चाहता है और दर्पणी की कमाई से ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। आज़ादी के 20 वर्षों बाद भी गरीब कमजोर लोगों पर बड़े लोगों के जोरों जुल्म वैसे ही बरकरार है। थोड़ा सा साग खोटने पर दर्पणी की बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है और उसका लड़का जब पूछने जाता है कि उसकी माँ को क्यों पीटा गया, तो उसे भी लाठी डंडों से बुरी तरह से आहत किया जाता है। उपन्यास में इन दोनों की दारुण गरीबी का चित्रण मिलता है। इस गरीबी की मार से घुरबीन, दर्पणी, महेश्वा की पत्नी और अंत में महेश्वा भी असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। बबूल इन्हीं लोगों के झुलसते काले जीवन का प्रतीक है।